وكأي من دابة لا تحمل رزقها، اور کتنے ہی زمین پر چلنے والے ہیں جو اٹھائے نہیں پھرتے اپنا رزق، بلکہ اللہ یرزقها وإياكم، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے ان کو بھی اور تم کو تمہیں بھی، وهو السميع العليم، اور وہ خوب سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. پیچھے بات ہوئی ہجرت کی، ہجرت کے کرنے کے ساتھ ہی جو ایک خوف آتا ہے نا، یعنی ہجرت سے روکنے والا جو اندیشہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، یہاں تو بزنس سیٹ ہے، یہاں تو جاب ملی ہوئی ہے، یہاں تو کاروبار چمک رہا ہے، یہاں تو چار لوگ اب ہمیں جانتے ہیں، وہاں کون جانے گا. کہیں بھی کوئی ہجرت کرتا ہے تو انسان کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے، لیکن جو ہجرت اللہ کے لیے ہوتی ہے نا اس میں تو یہ اندیشے زیادہ ہی ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ مال کے لیے بھی ہجرتیں کرتے ہیں، وقتی طور پہ اپنے سارے اثاثے بیچ دیتے ہیں، عورتیں اپنا زیور بیچتی ہیں کہ چلو باہر کے ملک چلتے ہیں، وہاں جا کے اچھی جاب ملے گی. شروع کے دن اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں آ کے بعض دفعہ پھر ان کو ہیلپ لینی پڑتی ہے حکومت سے، کیونکہ ہم بہت لٹے پٹے آ گئے. لیکن لوگ صبر کر لیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بس ایک دفعہ سیٹ ہو گئے تو پھر اس کے بعد تو آپ دیکھیے گا کہ ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہوگا. لیکن جو ہی رزق کی بات ہوتی ہے، اور یہاں پھر وہی کہوں گی کہ ہجرت سے مراد یہاں زمین کی ہجرت نہیں ہے کہ آپ زمین کا ایک ٹکڑا چھوڑ کر دوسری جگہ جاتے ہیں، بلکہ یہاں ذہنی ہجرت ہے. ایک حرام کاروبار کو چھوڑ کر حلال کاروبار کو اپنانے کے دن بھی ہجرت کے ہوتے ہیں. ایک ایسی جاب جس میں ڈاؤٹس تھے، جس میں شک تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ممکن نہیں ہو رہا تھا، آپ اس بزنس کو، اس جاب کو چھوڑتے ہیں، یہ بھی آپ کی ہجرت ہے. حقیقت یہ کہ گناہوں کو چھوڑنے والا بھی ایک مہاجر ہوتا ہے. جیسے ہم سب قرآن کی طرف آتے ہیں تو اس سے پہلے ہماری ایک اپنی زندگی چل رہی ہوتی ہے، ہماری دوستیاں، ہماری فرینڈشپس، سب کچھ ہے. کیونکہ رزق میں صرف مال اور دولت نہیں ہے، دوستیاں بھی رزق ہوتی ہیں، پارٹیاں بھی رزق ہوتی ہیں، فرینڈس، وہ سب لوگ جو ہمارے ہر حال میں ساتھ دینے والے بنے ہوتے ہیں. تو اب ان کو جب چھوڑنے لگتا ہے انسان، جب ان کی آنکھوں میں انسان کچھ اجنبیت دیکھتا ہے تو دل میں تکلیف محسوس کرتا ہے کہ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا، اس طرح تو میں بالکل تنہا رہ جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غم نہ کرو، اللہ یرزقها وإياكم. اور اگر اللہ تعالیٰ کے رزاق ہونے کو جاننا ہے نا، کہ جو دوسروں سے الگ ہوتے ہوئے بھی بندے کو رزق دیتا ہے، تو پیدا ہوتے بچے کو دیکھ لے. کوئی بچہ جاب نہیں کرتا، کوئی بچہ اپنے ساتھ کوئی دودھ کا سامان نہیں لے کر آتا، لیکن وہ ساتھ جو ماں کے پیٹ میں اس کو رزق دیتی ہے، جو ہی وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو وہی رزق ماں کے جسم میں اللہ تعالیٰ دودھ کی صورت میں ڈال دیتا ہے. تو کبھی بھی اللہ کے راستے میں اس طرح کی ہجرت سے نہ ڈریے کہ جس میں مال کا نقصان ہو. مثلاً اس کو پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو جاب کر رہے تھے، بیچ میں قرآن کا کورس آ گیا، جاب چھوڑنی پڑی، کئی اندیشے، کئی سوال، اب دل بھی نہیں لگتا، اور دل نہ بھی لگے کام کرنا پڑے، مجبوری ہے، کیا کرے، اللہ سے مانگیے. آپ دیکھیں گے کہ خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کی چیزوں کو اس طرح سے مینیج کروا دیں گے کہ کم سے کم مال کی کمی آپ کو فیل نہیں ہوگی، خواہشات کم ہو جائیں گی، بیکار چیزیں زندگی سے نکل جائیں گی. اب اس کے بعد توحید کو اجاگر کرنے والے نقطے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کس نے مسخر کیے سورج اور چاند، یعنی کون ایک گھیر میں رکھے ہوئے ان کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان قریب کہیں گے کہ اللہ نے. پیچھے بات ہو چکی کہ کفار مکہ توحید ربوبیت کے قائل تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، سورج چاند ستاروں کا پیدا کرنے والا مانتے تھے. مسئلہ تھا الوہیت میں، عبادت میں. وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ ہمارے لات نے آسمان بنایا یا ہماری منات نے زمین بنائی ہے، لیکن جو ہی مدد مانگنا، دعائیں مانگنا، حاجات کی طلب رسی کرنا، جب اس کا معاملہ آتا تو فوراً ہی اس وقت وہ لے کے چل پڑتے اس بات کو کہ ہم کس طرح سے ان لوگوں کو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہماری ان چیزوں میں شریک ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی فطرت کو پکارو، پوچھو کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، خود ہی کہیں گے اللہ نے. گویا کہ دنیا میں کوئی شخص ایتھیس نہیں ہے. کل بات ہو رہی تھی کسی کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں ایک شخص بھی ایتھیسٹ نہیں ہے، یعنی دہریہ انگلش میں جس کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، جو بظاہر یہ کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ بلیو ان گاڈ. میں نے کہا کیسے نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ بھی نہیں مانتے نا کہ گاڈ ہے، وہ بھی کہتے ہیں گڈ لک، हैव अ गुड लक। ये गुड लक क्या है? हालांकि ये जायज़ नहीं है कहना, हमारे यहाँ भी ये कितना मारूफ जुमला है, ओ गुड लक। नो, ये लक को गॉड कह रहे होते हैं कि लक क्या, यानी नाक को इधर से ना पकड़ो ना तो पीछे से घुमा के पकड़ लो। कोई खुदा के वजूद से इनकार कर ही नहीं सकता, तो कहा फिर इनसे पूछो, फन नयू फकून, फिर किस तरफ धोखा खा रहे हो? बताओ इतना खूबसूरत निज़ाम सूरज चांद सितारों का कौन चला रहा है? क्या ये सारा कुछ एक सेट सिस्टम में हो रहा है? तुम्हारी गाड़ियों के व्हील तो इस तरह नहीं चलते, तुम्हारा क्या हाल हो गया? बस मान जाओ कि फिर ये सब कुछ अल्लाह की है। फिर फरमाया आगे, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क लिमन यशा, अल्लाह ताला कुशादा करता है रिज़्क को जिसके लिए चाहे, मिन इबादिही अपने बंदों में से, व यक़दिरु लहू और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, इन्नल्लाहा बिकुल्ली शैइन अलीम, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। कुफारे मक्का जो थे वो मुसलमानों को आर दिलाते थे, कहते थे अगर तुम बड़े अल्लाह वाले बनते हो ना तो बताओ कि तुम्हारे ख्याल में सब कुछ अल्लाह का है तो तुम्हें क्यों नहीं देता? ये तुम्हारी खस्ता खाली क्यों है? तुम्हारे पाँव में जूता नहीं, बदन पे चीथड़े लटके हुए, खाने को बासी रोटियाँ कभी कभार तुम्हें मिल जाती हैं, क्या खुदा के मानने वाले ऐसे होते हैं? आज भी लोग हक बात करने वालों को शायद यही दिल में सोचते होंगे कि आखिर इनका रब है तो फिर इनको इतनी मुश्किलात क्यों हैं, क्यों इनको इस तरह से मुश्किलात पेश हो रही हैं? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम क्या समझते हो, मुझे नहीं पता कि किसको क्या मुश्किल है, बिलाल को कितनी तकलीफ़ है और हबीब कितने दिन के भूखे हैं, अल्लाह को सब पता है। लेकिन अल्लाह की हिकमत है किसको कब कितना देना है। यहाँ अकीदा खोल के रख दिया कि दौलत की कसरत या किल्लत, हक और बातिल की शनाख्त का कोई मेयार नहीं है। आप भी लिख ले, ये गलतफहमी दूर कर दीजिए। पीछे भी कई बार इस पर इशारतन बात हुई है कि मत अपने बच्चों से ये कहें कि नमाज़ पढ़ो तो तुम्हें अच्छे नंबर मिलेंगे, नमाज़ पढ़ोगे तो देखना तुम्हें पसंद की चीज़ मिलेगी, कुछ मिले कि ना मिले हक हक है, कुछ खोए या कुछ पाए बातिल बातिल है। इस मेयार पे बहुत लोग बह गए, दीन की तरफ आते आते धड़क जाते हैं, हमने तो सोचा था अब दीन पे आने लगे हैं, देखना सारे मसले हल हो जाएंगे, बेटियों के रिश्ते हो जाएंगे, बेटों को जॉब मिल जाएगी, घर बन जाएगा, और इतना कुछ इतने दिन से सपारे खोल खोल के पढ़ रहे हैं ताकि हाजात रवाई हो, हुई तो नहीं? क्या आज हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है? कोई मुश्किल आती है तो लोग क्यों कुरान पढ़ते हैं? कुरान खानी के नाम पर, सूरत यासीन के नाम पे, यही कॉन्सेप्ट है कि नेकियां करते हैं देखना अल्लाह ताला राजी होगा। पता क्या चलता है, वो जितना कुरान आप पढ़ते हैं उतनी मुश्किल हो रही है। अल्लाह हो यबसुतु रिज़्क, दुनिया में कितने बागी और सरकश गुजरे, अल्लाह ने उनको इतना रिस्क दिया, और दुनिया जहान का सबसे खूबसूरत इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो दो महीने तक उनके घर में चूल्हे नहीं थे। लेकिन आप इसका अपोजिट भी देखते हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को देखें, हज़रत उस्मान गनी को देखें, हज़रत अबू बकर को देखें, इतनी दौलत थी इनके पास। एक सहाबी गालिब अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, कहते हैं कि मेरा तो ये हाल हो गया कि मट्टी उठाता हूँ तो उसके नीचे से सोना निकलता है, कि जब फौत हुए थे तो इनका जो विरसा था वो इतना सोना था उसमें कि कुल्हाड़ों से काट काट के टुकड़े विरासत में बटे थे। अल्लाह दे देता है, कोई बड़ी बात नहीं। और कई कुफार हैं वो सड़कों पर आज भी देखिए गदागर बने बैठे। हाफिज़ इब्ने हजर अल अस्क़लानी के बारे में आता है, बहुत ही मारूफ और यानी बहुत मवाहिद इंसान थे, बहुत मारूफ किताब भी इन्होंने लिखी है, उसकी शरह भी है। एक दफ़ा बहुत अच्छे हाल में अपने घोड़े पे सवार कहीं से गुजरे तो एक काफिर जो था वो बहुत ही बुरे हाल में भीख मांग रहा था, इनको रोक लिया, कहने लगा कि तुम्हारे नबी ने दुरुस्त नहीं कहा। कहा क्या? कहने लगा कि तुम्हारे नबी ने कहा है कि ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए ये बाग है, यानी फनप्लेक्स है, हालांकि मेरा हाल और तुम्हारा हाल देखो तो कितना है, तुम इतनी ऐश में हो और मैं इतनी सड़कों पे धक्के खा रहा हूँ, तो फिर तुम्हारे नबी की ये बात दुरुस्त तो ना हुई। अब आप देखिए कैसे वक्त में अमूमन हम कांप जाते हैं, एकदम इम्प्रेस होते हैं, नो 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 दैट्स एक्चुअली 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 नहीं, दलील का कितना वज़न है। कितना खूबसूरत जवाब दिया हाफिज़ इब्ने हजर अल अस्क़लानी ने, कहने लगे कि नहीं, हमारे नबी की बात बिल्कुल सच है। कैसे? कि तू मेरा हाल दुनिया में जो अच्छा देख रहा है ना, लेकिन तुझे पता चल जाए कि जन्नत में अल्लाह ने मोमिनों को क्या देना है तो उसके मुकाबले में ये कैदी का ही हाल है। मैं फिर भी कैदियों वाले लिबास में हूँ, जो मुझे इसके बाद मिलना है, और जहन्नुम में जाके कुफार का जो मामला हो जाना है उसको देखते हुए दुनिया में जो आज तेरा हाल है, तूने ये समझना में कि किसी फन प्लग से आया था। तो बात यह है कि अल्लाह यबसुत रिज़्क़ लिमन यशा, इस रिस्क के चैप्टर को तो अपने दीन या अपनी बेदीनी से अलग कर दें। बिल्कुल हमारे यहाँ शौरी तौर पर नासमझी में बीवियाँ शौहरों को, माएँ बेटों को यही ताने दे रही होती हैं, नमाज नहीं पढ़ते ना इसलिए कारोबार नहीं चल रहा। मत करें, यकीन करें, इसको बिल्कुल अलग कर दें। ये किया था ना तो एक्सीडेंट हो गया, मेरी नहीं सुनते ना तो आज ये हुआ, बीमार पड़ गया ना, मत करें, प्लीज़ ना करें। मैं और आप नहीं जानते, हदीस में आता है कि अल्लाह ताला को पता है किस बंदे को मैं ज़्यादा दूंगा तो उसका दीन बिगड़ जाना है, और किसका मैं ज़्यादा ले लूंगा तो भी उसका दीन बिगड़ जाना है, क्योंकि कुछ मायूसियों से कुफर कर जाते हैं और कुछ ऐश में आकर कुफर करते हैं। अल्लाह नपा तुला देता है, अपने लिए हम क्या कहें। दुआ मांगा करें कि अल्लाह मुझे वो रिस्क दे कि जो तेरी मोहब्बत मुझसे ना दूर करे, जो मेरे दीन को कमज़ोर ना करे। ऐ अल्लाह मुझे दिल भी दे, अगर मुझे माल दे तो मुझे दिल भी वो दे जो हज़रत उस्मान गनी जैसा हो, कि मेरा माल मुझे नुकसान ना दे, मुझे तकलीफ़ ना दे। फिर इसके बाद कुछ और नेमतों की तरफ इशारा दिलाया, वलैन सअलतहुम मन नज़्ज़ल मिनस्समा इमाअन, और अगर आप इनसे पूछें किसने उतारा है आसमान से पानी। फिर उसके बाद फअहया बिहिल अर्ज़ मिन बादी मौतिहा, फिर इसके बाद ज़मीन को इसके बंजर बन जाने के बाद लयकूलुन्नल्लाह, तो अलबत्ता ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने। देखिए तीसरा सवाल है बारिश का बरसाना। आज तक साइंस इतनी तरक्की करने के बावजूद बारिश बरसा नहीं सकी। आप बारिश बरस रही हो तो रोक नहीं सकते, सरासर अल्लाह के इख्तियार में। सैलाब आ जाते हैं, आप उसके आगे बंद बांधते हैं, आप डैम बनाते हैं, आप मुख्तलिफ तरीके से प्रिवेंशंस लेते हैं, करेंगे, लेकिन होती बारिश को कोई रोक नहीं सकता। और ना हो तो कर लें, लोगों ने कोशिश की, कुछ साल पहले अमेरिका ने एक्सपीरियंस किया कि बारिश को मसनूई तौर पर बरसाया जाए, नहीं कामयाब हुए। कामयाब होता तो बताएं आज दुनिया में लोग कहत से मारे जाते। जिन मुल्कों के पास ये टेक्निक्स आ जाती हैं वो तो शायद कर्ज़ों के ऊपर या सूद के साथ दे दे के उनके मुल्कों में इतने बारिश बरसाएं कि हो सकता है बारिश तो हो जाए लेकिन वो और ही उनके जाल में फंसे रहे, लेकिन नहीं कर सके। फितरत बोलेगी कि लयकूलुन्नल्लाह, अलबत्ता ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने, वाकई अल्लाह ही है जो ये सब कुछ कर रहा है। तो कहा कुल अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कह दीजिए कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए। मान क्यों नहीं जाते, अड़ी क्यों करते हो, इतना अकड़े क्यों हो? यहाँ देखिए कि लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह क्यों आया। एक तो ये है कि जब ये सारे काम अल्लाह के हैं तो फिर तारीफ़ का मुस्तहिक भी वही है। दूसरों को कहाँ तारीफ़ का हक पहुँच गया कि हर वक्त तुम्हारी ज़ुबान ने दूसरों के गुन गाएँ, दूसरे मुल्कों की तारीफ़ें करें, बड़ी बड़ी हुकूमतों की ख्वाहिशात रखें, इस बात को करें। यानी तारीफ़ फिर अल्लाह की है। दूसरा मफहूम अल्हम्दुलिल्लाह का क्या है कि अल्लाह का शुक्र इस बात पर कि तुम इस बात का एतराफ़ करते हो कि अल्लाह ने बारिश पैदा की है। बल अक्सरहुम ला याकिलून, लेकिन हकीकत क्या है, हक वाज़े होने के बावजूद, बात समझ आने के बावजूद इनमें से अक्सर लोग अक्ल नहीं रखते, नादान है। कहाँ चली जाती हैं लोगों की अक्लें? हमारे यहाँ कहते हैं फलां की अक्ल घास चरने गई। यकीन करें कि अल्लाह के मामले में तो लोगों की अक्लें वाकई घास चर रही हैं, कि जब इंसान अल्लाह को ना पहचाने, अल्लाह के बारे में ना गौर व फिक्र करे, तो फिर उसका एक अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या है कि वो दुनिया के बारे में धोखे का शिकार होता है। लिहाजा आप तौहीद वाले सवालात करने के बाद दुनिया की हकीकत पूछी और पुछाई गई, फरमाया वमा हाज़िहिल हयातु दुनिया, और नहीं है ये दुनिया की ज़िंदगी, इल्ला लहवुन व लाइब, मगर खेल और तमाशा, व इन्नद्दार अलाखिरत लहियल हयवान, और दार आखरत की ज़िंदगी ही हकीकी ज़िंदगी है, जिसे मौत नहीं, हमेशा रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। लौ कानू यालमून, काश वो इस हकीकत को जानते। कहाँ पे ला के अल्लाह ताला ने दुनिया की हकीकत खोली, जहाँ इंसान अंदर से अल्लाह ताला के वजूद का इकरार कर चुका था, अल्लाह ताला की बात को समझ चुका था। कहा फिर ये दुनिया, चार दिन की दुनिया, जिसके पीछे लगकर उस रब को नाराज करते हो। ये है क्या? आप देखिए कि जैसे बच्चे थोड़ी ही देर के लिए खेलने लगे, उनके खेलने के अमल को देखकर कोई बंदा ये कह ले कि अब ये खेल इनका हमेशा रहेगा, कोई मान सकता है? 4 दिन का खेल हो, दिन तो क्या 4 घंटे नहीं कोई खेल सकता। ज़रा थोड़ा सा खेल तमाशे के साथ हम दुनिया को देखते हैं, क्योंकि यहाँ 2 लफ्ज़ हैं, वैसे तो आगे एक सूरत आने वाली है, उसमें 4 चीज़ों के साथ तकाबुल किया है। एक लफ्ज़ है लहव और एक है लाइव, दोनों का फ़र्क देखिए। लहव क्या है? हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला की याद से गाफिल कर दे। पीछे भी हम पढ़ चुके, आगे फिर अब पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह सूरह लुकमान में, मिनन नास मैं यश्तरी लहवल हदीस। तो लहव कहते हैं हर वो चीज़ जो बंदे को उसके असल मकसद से गाफिल कर दे, ठीक है। और लाइव खेल को कहते हैं, मलअब अरबी ज़ुबान में कहते हैं प्लेग्राउंड को, मलअब खेलने की जगह, लाइब खिलाड़ी को कहते हैं, जैसे जो भी किसी चीज़ को खेल रहे होते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं लोगों, ये दुनिया की ज़िंदगी कुछ भी तो नहीं, ये तो सिर्फ एक दिल का बहलावा है। ये 4 दिन की दुनिया, इसकी लज्जतों पे फरेफ्ता हो, आखरत का कभी ख्याल ही नहीं आता। जब उनको बताया जाए, पूछा जाए, बात सारी समझ आती है, लेकिन सब कुछ समझने के बाद फिर कौन सी चीज़ है जो अमल के वक्त पाँव पकड़ लेती है इस दुनिया की चकाचौंध। अब देखिए कि खेल ख़त्म होने से पहले हर चीज़ अपनी जगह पे सजी संवरी होती है। जो ही खेल ख़त्म होता है, सब चीज़ें उठाओ। कभी कोई स्टेज ड्रामा देखा हो या कभी स्कूल में खेले हो, तो आप देखते हैं कि कितने अहतमाम से चीज़ें बनाई जाती हैं, कॉस्ट्यूम्स होते हैं, कुर्सियाँ मेज़ जमा किए जाते हैं। जो ही खेल ख़त्म होता है, सब उठाते हैं, बस अपनी अपनी चीज़ें जमा करने के लिए आ चुके होते हैं। किराए की चीज़ें होती हैं तो लोग आके फ़ौरन समेटने लग जाते हैं, इस तरह की बातें करने लगते हैं, लेकिन इंसान जो है अपने असल रूप में आते हैं। बिल्कुल आज हम सब ने कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं। आज हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो हम में से कोई किसी रंग का है, कोई किसी रूप का है। ये क्या है? ये सिर्फ एक वक्ती खेल है। असल जो हमारे किरदार होंगे ना, वो दार अलाखिरतिल्लहियल हयावान। हयावान का लफ्ज़ है, ये हयात से ही है, ज़िंदगी। नहर हैवान एक जन्नत के बाहर नहर है, जिसके अंदर लोगों को जब नहलाया जाएगा या उनको उसके अंदर डाला जाएगा, तो उसके बाद उनको कभी मौत नहीं आएगी। उनके बाल सज जाएंगे, उनके दिल साफ़ सुथरे हो जाएंगे, दिल के अंदर से कीने बुग़स ख़त्म हो जाएंगे, और उनको वाकई फिर उस जन्नत में मिलने वाली जो नेमतें हैं उनको पाना, उनको इस्तेमाल करना अच्छा लगेगा। आप अगर गौर करें तो दुनिया में एक मोमिन जो है वाकई इस दुनिया को एक वक्त रास्ता समझता है, जबकि काफिर सारी ज़िंदगी इसके कारोबार में मशगूल रहता है, शब और रोज़ काम करता है। जब मरता है तो क्या होता है? खाली हाथ जाता है ना। बिल्कुल इसी तरह बच्चे सारा दिन मिट्टी के घरौंदों से खेलते हैं और रात को खाली हाथ वापस आते हैं, क्या मिलता है? थकन। कभी समंदर पे गए हों और वहाँ मिट्टी से आप खेले हों, तो आप देखेंगे कि इतनी थकन हो जाती है कि जिस्म का एक एक जोड़ हिलने लगता है। अल्लाह ताला कहते हैं यही कैफियत मरने वाले काफिर की मौत के वक्त होती है। जिस्म का एक एक अंग टूट रहा होता है। वह नाजियात गरका व नाशितात नश्ता, कहा जब डूब डूब कर फरिश्ते जान निकालते हैं, उस वक्त इंसान को समझ आती है कि ये क्या था। अब आप देखिए कि खेल में किसी को बादशाह बना दिया, किसी को भिखारी बना दिया, क्या वो हकीकत में बादशाह या भिखारी होगा? नहीं होगा ना। कितनी देर है? कोई 60 साल, कोई 70 साल। जब मौत के दरवाजे से खाली हाथ गुजरना है, आप सोचिए कि मौत का दरवाज़ा वो सिक्योरिटी डोर है जिसके आगे आप हैंड लगेज भी नहीं लेके जा सकते। जहाज़ में जाते हुए ऐसा होता है ना, यहाँ आप ये नहीं ले जा सकते, यहाँ ये सामान छोड़ दें, चले अब हैंड कैरी कर लें। और बाज़ दफ़ा आपने देखा है कि जहाज़ में दाखिल होने से पहले आपके हैंड कैरीज भी ले लेते हैं। छोटे जहाज़ों में अमूमन ऐसा होता है, वो कहते हैं नहीं आप छोड़ दें, हम खुद ही इसको आपको एयरपोर्ट पे आगे दे देंगे, आप जहाज़ में अकेले जाएं। मौत का दरवाज़ा भी एक ऐसा ही दरवाज़ा है। लौकानु यालमून, काश लोग इस हकीकत को जानते, पता लग जाता दुनिया में कि करना क्या। आप इमेजिन करें इसको अपने लिए, आप नॉर्वे में रहती हैं, आप यहाँ बहुत खूबसूरत चीज़ें अपने इर्द गिर्द देखती हैं, आपका दिल चाहता है अच्छा जब मैं वापस जाऊंगी तो अपनी माँ के लिए, बहन के लिए, जो भी आपके रिश्तेदार होंगे, सास के लिए, नंदों के लिए, मैं ये चीज़ लेके जाऊंगी। जो लोग जाते हैं, हो सकता है उससे पहले वो शॉपिंग करते भी हों, अब अगर बिलफर्ज उनको एक लम्हे के लिए इसका एहसास हो जाए कि जो शॉपिंग मैंने इधर की, इतनी मेहनत से पैसा लगाया, वक्त लगाया, वो एयरपोर्ट वालों ने मुझे आगे लेके जाने नहीं दी। वापस तो क्या भेजनी थी उन्होंने रख ली, सामने गार्बेज में डाल दी। कोई खरीदेगा, वक्त ज़ाया करेगा? और बिलफर्ज कभी किसी के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो तो उस चीज़ का दुख ही नहीं जाता। ईमान वाला सारी जिंदगी इस कोशिश में होता है कि अपने आप को एक बड़े मकसद के लिए ले। फिर फितरत को झंझोड़ा गया, एक और उनकी खामी का इजहार किया गया इधर, फइजा रकिबू फिल फुल की। फिर जब वो सवार होते हैं कश्ती में, फुल का लफ्ज़ पीछे भी गुजर चुका है, कश्ती के लिए आता है वाहिद, जमा, मुजक्कर और मोनस, हर तरह के लिए लफ्ज़ फुल का आता है। ऐसा लफ्ज़ अरबी जुबान में इसम जिन्स कहलाता है। इसम जिन्स, कहीं भी कल आपसे कोई पूछे कि इसम जिन्स क्या है, तो आप कहें कि वाहिद, मुअन्नस, मुजक्कर, हर एक में उसका इत्तलाक होता है, तो फुल्क भी उसी में है। हालांकि इसके बरक्स जारिया का लफ्ज़ भी कश्ती के लिए आता है, वो मुअन्नस है, लेकिन फुल्क इसम जिन्स। कश्तियों में सवार होते हैं दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, दुआ मांगते हैं अल्लाह से खालिस करते हुए उसके लिए अपने दीन को। एक तो मफहूम इस तरह से बनता है कि जब कश्तियों पर सवार होते हैं तो अल्लाह से ही दुआएं मांगते हैं। दूसरा इसका मानी क्या बनता है कि जब वो कश्तियों में सवार होते हैं तो अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उससे दुआ मांगते हैं। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्री, फिर जब वो उनको सलामती से पहुंचाता है इनको खुशकी पर, इज़ा हुम युश्रिकून, तो उस वक्त वो शिर्क करने लगते हैं। क्यों करते हैं ये कुछ? लियकफुरू बिमा आतैनाहुम, ताकि वो ना शुक्री करें उस नेमत की जो हमने उनको दी है। अल्लाह ने जो नेमत दी, आफियत से पहुंचा दिया, मंजिल पे पहुंचा दिया, खुशकी पे बचा लिया, ये कुफराने नेमत कर रहे होते हैं। वली यतमत्ताओ, और ताकि लुत्फ उठा लें इस दुनिया दनी के, इस 4 दिन की दुनिया के मज़े उठा लें। कोई बात नहीं, फसौफ यालमून, पसंद करीब जान लेंगे, इनको लग पता जाएगा कि करते क्या थे, कर क्या रहे थे, इनके साथ होना क्या था, और इस तरह के काम कर करा के इन्होंने अपने आप को अल्लाह ताला के अजाबों का मुस्तहिक बना लिया। ये वही आयात है जो पीछे भी जिक्र हुआ, इकरमा बिन अबी जहल के बारे में। मक्का वालों की आदत थी, ज़रा गौर से सुनिएगा, रिवाइज करवा रही हूँ, पहले बात हो चुकी है। उनका ख्याल क्या था कि हमारे छोटे छोटे काम ये बुत कर देंगे, लात मनात उज़ा याउग यागूस नसर, ये कर देंगे। लेकिन जो बड़े बड़े काम है ना, कोई बड़ी मुश्किल, कोई अनयूजल हालात, कोई बीमारी, उन्हीं में से एक ये था कि समंदर में जब तूफान आ जाते तो कश्ती डोलने लगती। कहते थे ये बड़े काम ये छोटे बुत नहीं कर सकते, उसके लिए ऊपर वाले को पुकारेंगे। वैसे भी जब इंसान पे बड़ी मुश्किल आती है ना, तो फितरत पे पड़े हुए पर्दे जो है वो छटने लगते हैं। आज का मुसलमान क्या कहता है? छोटी छोटी चीज़ें अल्लाह से मांगते रहो, कोई बड़ा काम पड़ा तो अब्दुल्ला शाह गाजी जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ हुई तो दाता हजवेरी को पुकारेंगे, फिर जाएंगे किसी कुतुबद्दीन के पास और किसी फलां पीर और फलां पीर। किसका शिर्क ज़्यादा बुरा है, हमारा कि मक्का वालों का? मक्का वाले भी मुसलमान थे, लेकिन उनके अकायद में इतना शिर्क आ चुका था, बार बार उनको मुशरिकीन मक्का कहा जाता है, पूरी सीरत में उनको मुशरिकीन मक्का के खिताब से पुकारा जाता है। मैं कहती हूँ शुक्र है आज कोई नबी नहीं है, और शुक्र है कि इस कुरान के बाद कोई किताब नहीं है। हमारा नाम होता ये मुशरिकीन नार्वे, मुशरिकीन पाकिस्तान, मुशरिकीन इंडिया, मुशरिकीन अमेरिका, हर शहर का नाम लेके कहा जाता है ये वहाँ के मुशरिकीन है। कोई मत ये सोचे कि हम मुसलमान होने के बावजूद अपनी मर्जी के काम करके भी मुसलमान रहेंगे। सूरह यूसुफ में हम पढ़ चुके कि वमा युमिनु बिल्लाही अक्सरुहुम इल्ला वहुम मुशरिकून, बहुत सारे लोग जो अल्लाह पर ईमान का दावा करते हैं इसके बावजूद वो मुशरिक होते हैं। और जब तक किताबु तौहीद इंसान नहीं पढ़ता, तौहीद की अकसाम नहीं पढ़ता, पता ही नहीं चलता। आज बाज लोग बड़े ज़ोक और शौक से दीन की तबलीग कर रहे होते हैं, लेकिन उनके वाकयात, उनके हालात में कितना शिर्क आता है। जो किताबें पढ़ी पढ़ाई जाती हैं, जिनसे रग़बत दिलाई जाती है लोगों को, उन्हीं के अंदर ऐसे वाकयात है जो बिल्कुल मुशरिकाना वाकयात है। लेकिन इल्म चूंकि नहीं होता, इखलास के बावजूद, नीयत अच्छी होने के बावजूद वो चीज़ फ़ायदा नहीं देती। यहाँ एक और बात भी पता चली, दुआ के लफ्ज़ को देखिए, मैं मैंने जो दो मुख्तलिफ तर्जमे आपके सामने रखे, इससे क्या पता चलता है? मुखलिसीन लहुद्दीन, एक इसका तर्जमा क्या किया आपके सामने कि सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं, दावा का लफ्ज़ दुआ के माने में, और दूसरा दावुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, इसमें हमने दीन की बात की। इससे एक इशारा मिलता है क्या कि दुआ भी इबादत है, जो बात हमें हदीस से भी मिलती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या दुआ खुबुल इबादा, दुआ भी इबादत है। अब आप देखिए कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, इय्याका नाबुदु, तो फिर अल्लाह के माँ सिवा से दुआ कैसे कर सकते हैं? यहाँ बहुत वाज़े इशारा है कि गैर अल्लाह से दुआएं मांगना, बिगड़ी बना दे, मेरी नैया पार लगा दे, बैठी हूँ तेरे दर पे सवाली बन के, और ये तो नबियों को तो छोड़ दे, वलियों को छोड़ दे, लोगों ने तो पता नहीं किस किस के नाम पे इस किस्म की नातें बनाई हुई, कवालियाँ बनाई हुई, पोइम्स बनी हुई कि जिसमें पीराने पीर ख्वाजा दस्तगीर। यानी एक मौके पे किसी ने ऐसे ही मेरे पास एक लिंक भेजा, मैंने खोला, मैं तो कांप के रह गई। इंडियन बहुत मारूफ कोई सिंगर थे, उनकी आवाज़ में, और हो सकता है किसी फिल्म का ही वो होगा सीन कि जिसमें उन्होंने यही गाया था, पीराने पीर ख्वाजा दस्तगीर। यकीन करें अगर मुझे अल्लाह का डर ना आए तो मैं आपको सुनवाऊँ, क्योंकि मुझे तो लगता है कि छत ना गिर जाए हम पर। और इतनी उसकी खूबसूरत ट्यून है कि क्या किसी गाने की ट्यून होगी, और पीछे बैकग्राउंड में तालियां भी हैं और लोग जो भी कर सकते हैं। मैं हैरान हो गई कि दस्तगीर कौन है, ख्वाजा दस्तगीर कौन है, मुइनुद्दीन चिश्ती कौन है, उन्हीं का नाम बीच में आ रहा था। ना अल्लाह के नबी, ना सहाबी, ना ताबईन, ना आइमाए कराम। आप आज 4 साल पहले, कुछ सालों के पहलों के लोगों को अपनी ज़िंदगियों में ये मुकाम दे दें जो अल्लाह के। आप नातों के शेर पढ़ के देखें, आपको ये बात खुल के सामने आ जाएगी कि लोग किस तरह अल्लाह को छोड़कर नबी से भी मांगने लग जाते हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लम ने कितने ज़ोर और शोर से औरत को मना किया कि जिसने आपको देखकर कहा कि माशा अल्लाह व माशेता, वो होगा जो अल्लाह चाहेगा और जो आप चाहेंगे। तो आपने फरमाया अजाल तनी लिल्लाहि निद, क्या तुम मुझे अल्लाह का निद बनाती है? अंदाद का लफ्ज़ हम पीछे पढ़ चुके हैं उसकी जमा, क्या अल्लाह का शरीक बनाती है? नहीं, बल माशा अल्लाह वहदा, वो होगा जो एक अल्लाह चाहेगा। तो लिहाजा अब अपनी दुआओं के किबले भी बदलने की ज़रूरत है।